29/12/1991 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્રપત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનગઢમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 38.
શ્રી મદ્રાસ પત્રાંક 449 પુષ્ઠકાળ ચોથો, આઠ પુષ્ઠકાળ છે, ચોથો પુષ્ઠકાળ ચાલે છે. જગા પર સ્વરૂપ નિશ્ચય કરીને મેં ભૂલ હો જાતી હૈ, કલ્પના હો જાતી હૈ, ભ્રાંતિ હો જાતી હૈ. ભૂલ કો હો, કલ્પના કો હો, ભ્રાંતિ કો હો. જરા થાશે ને, બેસજો. આજે ઉસકા ક્યા કારણ હૈ? ચૂંકિ તત્વજ્ઞાન કા અભ્યાસ કરને વાલા જીવ સ્વરૂપ કા નિશ્ચય કરતા હૈ. જગ્યા નો અભાવ છે ને. એક ભાઈ કાંતિભાઈ, ના ના કાંતિભાઈ, તું અહીંયા ઉઠી ગયા છે? ટક્યા છે ત્યાં. બહુ મારા જૂના મિત્ર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 449 આઠ પોસ્ટકાર્ડ કા એક પત્ર સંકલિત કિયા હૈ. સંવાદ કા એક મુખ્ય ભાઈ હૈ, ઉસકો એક પોસ્ટકાર્ડ લિખને કો બેઠે હોંગે. ફિર જો વિચાર કે જો ફ્લો ચાલુ રહા, દૂસરા લિખ દિયા, ફિર ભી બાત પૂરી નહીં હુઈ, વિચાર ફ્લો પૂરા નહીં હુઆ, તીસરા લિખ દિયા, ફ્લો ચાલુ રહા, ચોથા લિખ દિયા, ફિર ફ્લો ચાલુ રહા, આઠ પોસ્ટકાર્ડ લિખ દિયા. શ્રીમદજી, સહેજ ઇનકી તો વિકલ્પો કી પ્રવૃત્તિ ભી ઉતની સહેજ થી. અબ એક ચોથા નંબર કા પોસ્ટકાર્ડ આજ ચલતા હૈ. તીન તક ચલ ગયા હૈ આગે. ઉસમે વો બાત હૈ, યે હમારે લિયે બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ. યે બાત હમ મુમુક્ષુઓં કે લિયે કાફી લાગુ પડતી હૈ, ઇસલિયે પ્રયોજન હૈ. એસી બાત હૈ કે ગુરુદેવ કી કૃપા સે હમ લોગ કોઈ વિભિન્ન પ્રકાર કી ક્રિયાઓ મેં નહીં ફસે હૈ, ક્રિયાકાંડ મેં નહીં ફસે હૈ. જૈસે લોગ સંપ્રદાય મેં વ્રત આદિ ઉપવાસ કરતે હૈ, તપશ્ચર્યા માન લેતે હૈ, યા કોઈ સંપ્રદાય મેં પૂજા ભક્તિ કા બહોત ક્રિયાકાંડ ચલતા હૈ, બડા સમારોહ ચલતા હૈ. હમારે યહાં સ્વાધ્યાય કી પ્રધાનતા રહી. સ્વાધ્યાય મેં તત્વજ્ઞાન કા અભ્યાસ કી મુખ્યતા હૈ, ઓર સમ્યક દર્શન ઓર સાનુભવ મેં એક અચ્છા નિમિત્ત હૈ, અચ્છી કાર્ય પદ્ધતિ હૈ. સભી જ્ઞાનીઓ ને ઉસકા પ્રતિપાદન કિયા હૈ. અબ ઉસ સ્વાધ્યાય કે માધ્યમ સે પહેલે સે પહેલા હમ કરતે હૈ સ્વરૂપ કા નિશ્ચય. તો સ્વરૂપ નિશ્ચય કરને મે આત્મા એક રૂપી પદાર્થ હોને સે, ક્યા રૂપી પદાર્થ હૈ, જિસકો રૂપ નહીં હૈ, સ્પર્શ નહીં હૈ, ગંધ નહીં હૈ, રંગ નહીં હૈ. રૂપ મેને રંગ નહીં હૈ, શબ્દ નહીં હૈ, આકાર દિખને મે નહીં આતા હૈ. મેને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે વો ઉસકા પતા નહીં ચલતા હૈ કે આત્મા કૈસા હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કા તો અપને અપને ઇન્દ્રિયો સે આંખ કો રંગ દિખતા હૈ, ઓર કાન કો શબ્દ મિલતા હૈ, ઉસકો ગંધ મિલતી હૈ, નાક કો. તો ઉસમે એસા તો આત્મા હૈ નહીં કે જો ઉસકા વિષય હો ગયે. તો મન સે જબ પાંચ ઇન્દ્રિયો કા વિષય નહીં હૈ, તો મન સે ઇસકા વિચાર કિયા જાતા હૈ. और जिन महात्माओं ने आत्मा का अनुभव किया, आत्म शांति प्राप्त कर ली और इसी के फल स्वरूप जन्म मरण का परिभ्रमण का नाश कर लिया, ऐसे महात्माओं ने अपना अनुभव को और आत्म स्वरूप को बताया अपने शब्दों में। उसी को हम शास्त्र कहते हैं, उसी को जिनवाणी कहते हैं, उसी को हम द्रव्य श्रुत कहते हैं। वो पढ़ करके या सुन करके हम विचार करते हैं कि जब वो आत्मा दर्शाते हैं तो आत्मा हमारे विचार में भी पहले उसका कोई निश्चय हुए तो हम निर्णय करके उसको कार्यान्वित करें अनुभव के लिए। बिना निर्णय तो कोई कार्य वैसा ही नहीं होता, सभी कार्य में पहले तो निर्णय होता। हम घर से बाहर निकलेंगे कोई मामूली काम के लिए तो पहले तो निर्णय होगा कि मुझे किस काम के लिए बाहर जाना है, फिर उठेंगे, फिर चप्पल में पैर जाएगा, निर्णय बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता। अब आत्मस्वरूप का निर्णय करने में जब हमारे पास अनुभवी आत्मानुभवी पुरुषों के वचन हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे ज्ञान में आया है, हमारे अनुभव में आया है, वो हम भी हमारी भाषा में पूर्ण रूप से कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, वो बहुत अल्प मात्रा में ही उसको व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है उनके लिए भी जो अनुभवी है उनके लिए। इसलिए एक दिक्कत ये रही कि ये अरूपी पदार्थ को बताने वाले को भी बताने में पूरी पूरी बताने की परिस्थिति नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं है, फिर भी जिस मात्रा में वो बताते हैं उस मात्रा में से दूसरे लोग सुन करके अनुभव तक पहुंच सकते हैं, ये एक सुविधा है भी। तो उन्होंने जो बताया उसमें से विचार करना पड़ता है ये क्या कहते हैं, मेरा स्वरूप को बता आत्मा, मैंने मेरा स्वरूप को बताते हैं तो ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, ऐसा निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, उसमें गलती होती है, इसका क्या कारण है, ये विषय प्रस्तुत है। इधर कृपाल देव के शब्द में ये विषय इधर चलता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना द्वारा विचारने में, मैंने क्या होता है कि आत्मा को विचारने में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना हो जाती है। कल्पना मैंने भ्रांति, कल्पना माने गलती, कल्पना मैंने वास्तविकता से दूर, उसको कल्पना कहते हैं। आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना में लेता है विचार में जीव, उसका क्या कारण है, सही रूप से निश्चय नहीं होता है, नहीं हो सकता है और कल्पना बन जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका तीन कारण है, ऐसा यहाँ उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि ऐसी कल्पना होने में एक तो लोक संज्ञा, दूसरी ओघ संज्ञा और तीसरा असत्संग, ये तीन कारण है। लोक संज्ञा क्या चीज है कि लोगों पर दृष्टि रहती है, समाज पर दृष्टि रहती है, उसको लोक संज्ञा कहते हैं। दृष्टि रहना मैंने क्या कि लोग मुझे किस तरह से देखेंगे या देख रहे हैं, लोगों की नजर में मेरा क्या स्थान है, ऐसे लोगों की नजर की प्रधानता अपने विषय में रहनी, उसको लोक संज्ञा कहते हैं। ऐसी लोक संज्ञा वाला जीव स्वरूप निश्चय करने का अधिकारी नहीं, स्वरूप निश्चय करने के लिए वो काबिल नहीं, योग्यतावान नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखिए, लौकिक अभिमान तो स्वरूप निश्चय करने वाले को पहले तोड़ना पड़ता है। किसी सबों की नजर कहाँ हो रहती है, कहाँ होती है, कि जो भी अपने को जानते हैं पहचानते हैं वैसे ही लोग लोग हैं। क्या लोग मैंने क्या, सारी दुनिया सबों को नहीं पहचानती है। एक वर्ल्ड फिगर हो गए दूसरी बात होगी, लेकिन बाकी वर्ल्ड फिगर नहीं होने से तो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान लेती, अपनी ज्ञाति में, अपनी समाज में, अपने बाजार में, अपने मंडल में, अपने सिटी में, या अपने इलाके में, या अपने देश में। तो जो लोग मुझे पहचानते हैं वो मुझे, मेरी पहचान कैसी है लोगों में, जैसी पहचान है उसकी मुख्यता रहे हैं कि उसमें कोई कमी नहीं हो गए। मेरा स्थान जो है वो तो बराबर जमा रहे या बढ़ जावे, वृद्धिगत हो जाए मेरी इज्जत। ऐसा एक प्रकार का जो भाव रहता है अनादि से जीव को रहता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी को रहता है, सभी अज्ञानी को ये बात रहती ही है। तलाश कर लेना कि रहती है कि नहीं रहती है, तलाश करने से मालूम हो जाएगा कि ये परिणाम अपना रहता ही है। ये परिणाम है, ये स्वरूप का निश्चय करने में प्रतिपक्ष में है, बाधक है, स्वरूप निश्चय होने नहीं देगा। उस ऐसा भाव रख करके तत्वज्ञान का अभ्यास के माध्यम से आत्मा का निश्चय करेगा, काल्पनिक करेगा, वास्तविक नहीं होगा। एक तो ये लोक सामना वाला परिणाम है, बहुत खतरनाक है। कृपालु देव के शब्द में तो उसको कालकूट जहर बोला है। क्या बोला है, अगले पत्रों में, दूसरे दूसरे पत्रों में इसको कालकूट जहर बोला है। क्यों, कि बहुत से प्रकार के आत्मा के नुकसान करने वाले परिणाम इसी के दौरान होता है, इसी के कारण से होता है, इसलिए उसको कालकूट जहर बताया है। लाइट देने में क्या है कि जहर तो एक दफे मारता है, जहर तो एक दफे मृत्यु को पहुंचाता है, लेकिन ये जहर को ऐसा है कि अनंत जन्म मरण करवा देगा, इसलिए ये उपमा भी कुछ कम पड़ती है।
वस्तु निर्णय में बाधक कैसे है?
हाँ, वस्तु निर्णय में इसलिए बाधक है कि जो अपना स्वरूप है आत्मा का, वो स्वरूप ऐसा है कि वो बिल्कुल असंग तत्व है। क्या है, आत्मा मूल स्वरूप से बिल्कुल असंग तत्व है, और मैंने मान लिया कि मेरे साथ इसका ऐसा संबंध है, इसके साथ मेरा ऐसा संबंध है, इसके साथ मेरा ऐसा संबंध है, सारे समाज में मेरा ये स्थान है, घर में मेरा ये स्थान है, मेरे ऑफिस में मेरा ये स्थान है, मेरे समाज में मेरा ये स्थान है, मेरे मंडल में, संस्था में मेरा ये स्थान है, मेरे सिटी में मेरा ये स्थान है, मेरे देश में मेरा, उतना लफड़ा है उसमें, उतना लफड़ा है कि मेरा जो मूल स्थान है उसका डिसीजन निर्णय नहीं हो सकता है। यही कारण है वो जगह खाली हो जानी चाहिए, अवकाश हो जाना चाहिए, स्वरूप निश्चय के लिए एक अवकाश होना चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरा स्वरूप का ही निश्चय करना है, बाकी सब बातें गौण कर देनी है। देवचंद भाई नहीं होंगे, हूँ देवचंद भाई छो, ये बात भुलाई जावा से, मैं देह वाला नहीं, नाम वाला तो नहीं, लेकिन जिस वो तो देह का नाम है, लेकिन मैं देह वाला भी नहीं, और मैं विकल्प वाला भी मैं नहीं, मैं इंद्रियों वाला नहीं, इंद्रिय ज्ञान वाला भी नहीं। अतीन्द्रिय पदार्थ आत्मा कैसा, इसकी जिज्ञासा में लोक संज्ञा को छोड़नी है, यानी ढीली करनी है, गौण कर देनी है, इसके पहला स्वरूप निश्चय नहीं होगा।
नास्ती से अस्ति होगी या अस्ति से नास्ती होगी? नास्ती करते करते अस्ति हो जाएगी या अस्ति के अस्वीकार करते नास्ती होगी?
दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कोई आदमी को हेडेक है, सिर दर्द जिसको कहते हैं, उसको नींद नहीं आती है। क्या सिर दर्द होने से उसको नींद नहीं आती है रात्रि को? अब आप बताइए कि सिर दर्द मिटे तो नींद आवे या नींद आवे तो सिर दर्द मिटे, अब क्या होगा बताइए? ये मेरा प्रश्न है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। एक का जाना दूसरे का आना एक ही समय में होता है, इसलिए हमें कोई पक्ष नहीं करना है कि यहाँ से करे या यहाँ से करे, दोनों एक साथ होने वाला है, ये हमारी समझ में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग नास्ते में खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? अनादि से जीव कहाँ खड़ा है? नास्ते में क्या? अस्तु में। तो नास्ते में खड़ा है वो नास्ते को निग्लेक्ट कैसे कर सकता है? जो हकीकत है, जहाँ खड़ा है वो तो एक फैक्ट है कि हमारे में राग है, द्वेष है, मोह है, अनेक प्रकार के अवगुण है, दूषित परिणाम होते हैं। तो वो है सो है, वो तो फैक्ट है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो है उन वो हम नहीं चाहते, जब तो ये विचार हाथ में लिया। हम नॉवेल में ही पढ़ते और इसको क्यों पढ़ते हैं? नॉवेल में तो बहुत दिलचस्पी हो गए, ऐसे ऐसे ढंग से सब बातें चलती है, सस्पेंस स्टोरी जिसको कहते हैं। हाँ, पकड़ रखे, खाने को उठे नहीं, सोने को जावे नहीं, वो नहीं पढ़ के यूं इसको क्यों पढ़ गए? यही कारण
है।
लेकिन होगी कहाँ से? जगह तो खाली होनी चाहिए ना। जगह रोक ली, आप बैठे उस जगह, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अवकाश तो होना चाहिए ना, कम से कम उतना तो ख्याल करना है हमें कि हम अवकाश नहीं करेंगे तो जगह होगी कैसे? अस्थि को आने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। सभी महात्माओं ने ये बात की है कि तुम पहले बीज को बोना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो मोक्ष का बीज है, उसके पहले तुम क्षेत्र शुद्धि करो। गुरुदेव का प्रवचन आया था परसों क्षेत्र शुद्धि के लिए। क्षेत्र शुद्धि मैंने क्या? पूर्व भूमि का। जैसे खेत को खेड़ते हैं फिर अनाज बोते हैं, ऐसे ही डाल देते कोई अनाज को? ऐसे कोई नहीं डालते अनाज को, उसको ठीक तरह से पहले कल्टीवेट करते हैं, तैयार करते हैं भूमि को, फिर वहां बीज बोने में आता है। तो ये बात तो महत्व की है हमारे लिए, ये बात हमारे लिए बहुत महत्व की है कि हमने कोई क्षेत्र शुद्धि किया या नहीं किया। जैसे लोक संग ना तो है पर हम स्वरूप को निश्चय करने को बैठते हैं शास्त्र लेकर के, और हमारी उम्र चली जाती है। क्या शास्त्र पढ़ते पढ़ते कहीं लोग बुढ़ापे में आ गए और ये आज शिकायत करते हैं कि बहुत पढ़ा बहुत सुना लेकिन हमको कुछ मिला तो नहीं, प्राप्ति नहीं हुई है, क्या कारण है? कोई ठोस कारण है? ये तो साइंस है, ऐसे तो काम होने वाला नहीं। इसलिए गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, प्रत्यक्ष उनके वाणी में आत्मा का स्वरूप सुना, फिर भी हमें प्राप्ति नहीं हुई, तो हमने जो सुना उस बात के लिए जगह नहीं थी हमारे पास। हम कोई ऐसी परिस्थिति में खड़े रह करके सुना कि जिससे इस संयोग ऐसा महान योग भी निष्फल हो गया, सफल नहीं हुआ। क्या? तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। सब ये सब चीज दूसरों को तो मिली नहीं है। देखिए अभी हमारे आवागमन होने वाले विश्व में करीब 6 अरब की आबादी है, 585 करोड़ से ज्यादा लोग मनुष्य हैं जहाँ हम प्लेन से आवागमन कर सकते हैं। और भी मनुष्य के बहुत क्षेत्र हैं लेकिन हमारी दुनिया तो उतनी है ही। इस दुनिया में इस चीज किसके सामने आई है कि मुट्ठी भर लोगों के सामने, करोड़ों लोगों को तो सुनने भी नहीं पढ़ने में भी नहीं आती। अभी जो लोग है उसमें भी उसकी गहराई में जाने वाले कितने और ऊपर ऊपर से चलने वाले कितने, 99% तो ऊपर से जाते हैं। इतनी कीमती चीज मिली है फिर भी 99% लोग तो ऊपर से जाते हैं, जैसे खाना पीना घूमना ऐसा ही एक चीज बन जाती है कि चलो भी हमारी भी एक हॉबी है हम उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसा तो लोग मिलने वाले नहीं। इसलिए जब हमें मिली है तो वो निष्फल नहीं हो गए, इसका गंभीर विचार करना है। तो ये बात जैसे गुरुदेव ने कहीं बातें बताई ऐसे श्रीमद जी ने बहुत सी बातें बताई, और इसमें एक और अच्छी परिस्थिति है पत्रों में कि हमारे जैसे मुमुक्षु व्यक्तिगत रूप से पर्सनल टच में आए, इसलिए उन्होंने पर्सनल डायरेक्टिव्स दिया है कि तुम्हारे में ये प्रकार है शुभ छोड़ो जब तक तुमको सत्संग की सफलता हो जाएगी, तुम्हारे में ये दोष है, तुम्हारे में ये दोष है। भले ही 100 साल पहले या 90 साल पहले के ये पत्र है, 1949 का है, 99 साल पहले का है, 2048 चलता है, 99 साल पहले का पत्र हो गए, लेकिन अगर हमारे में कुछ ऐसा है हमको ये देखना है। इस मुमुक्षु को ऐसा लिखा, ये कृष्णदास भाई को लिखा, क्या कृष्णदास भाई को लिखा है सो बात हमको कुछ लागू होती है क्या, हमें यही देखना है। ये भी मुमुक्षु थे, हम भी मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु को जो सूचनाएं मिली व्यक्तिगत रूप से, ये बहुत बड़ा भाग्य की निशानी है। समष्टिगत उपदेश तो ज्ञानी देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कोई बात कहे तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां तो ऐसा ही योग बना है सब। तो एक तो लोक संज्ञा है, दूसरी ओक संज्ञा है। जो विचारधारा में हम खड़े हैं वहां क्या फेरफार करना है वो सोच लेना है। पदमचंद जी, हम जो भी थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, उसमें हमारी विचार पद्धति की कुछ ढांचा, जिसको कहता है पद्धति को हम काठियावाड़ी में कहते हैं कि ढांचे में फिट हो जाता है, फिर वहां से निकल नहीं सकता है। तो हमें उस विचार पद्धति से कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, अब प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा फेरफार करना है, ये बात हमें समझनी है। ऐसा एक प्रश्न कुछ भैंसर के सामने आया था, एक अपना मुमुक्षु ने ये कहा कि भेद ज्ञान हमें करना है और भेद ज्ञान से स्वानुभव होता है, और भेद ज्ञान राग और ज्ञान के बीच में होता है, जैसे सुगानी जी ने किया। वो खास करके दृढ़ दृष्टि प्रकाश का मुख्य अभ्यासी था, आपसे भी ज्यादा। तो उन्होंने ये कहा कि जी भैंसरी से ये पूछा कि मैं राग में नहीं हूं ऐसा ले नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ही हूं ऐसा ही लिया करूं, इस प्रकार से मेरा प्रयत्न अस्थि से जारी रखूं मैं और नास्तिक को मैं टच नहीं करूं, तो क्या मेरी कार्य पद्धति सही है क्या, क्या प्रश्न किया। जो आपका प्रश्न है ना, ठीक ऐसा ही प्रश्न है वैसा। बेंसर ने यह कहा कि ऐसे हो नहीं सकेगा, ये बात होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी कि राग तो है तुम्हारे में, ये एक फैक्ट है, हार्ड फैक्ट। तो राग है, उसका निषेध हुए बिना तुम अस्थि में आओगे कैसे, तुम्हें अस्थि को ग्रहण करना है। और नास्ति जो खड़ी है उसका निषेध तो तुम करते नहीं, इसका आदर में तो तुम खड़े हो, नास्ति के आदर में तो तुम खड़े हो, वो आदर छोड़े बिना इसका आदर कैसे होगा, इसका भी आदर हो और उसका भी आदर हो गए, ये बात तो असंभव है, बनी नहीं सकती। इसलिए ऐसा उत्तर दिया, ऐसा नहीं हो सकेगा। राग है उसका निषेध आना चाहिए, होना चाहिए, और अस्थि का ग्रहण, दोनों साइमल्टेनियस एक साथ चलना चाहिए। क्या एक साथ चलना चाहिए, ऐसी बात। ये प्रश्न तो उठते हैं, ये प्रश्न तो उठता है, क्योंकि अस्थि का विषय भी काफी गुरुदेव की कृपा से बाहर आया है, और इसलिए नास्तिक का विषय को कुछ हम शायद देखते ही नहीं है, ऐसी हमारी परिस्थिति समाज में करीब करीब हो चुकी है कि हम हमारे जीवन में नास्ते में कहाँ खड़ा है वो तो देखे नहीं, पर नायक नायक शुद्ध शुद्ध त्रिकाली त्रिकाली ध्रुव ध्रुव करते फे कहते फेरे वो विचार करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है, इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ जो चलते विषय में लोक संज्ञा के परिणाम स्वरूप निश्चय नहीं करने देगा, करने जाएंगे तो कल्पना हो जाएगी। दूसरी बात रही कही ओग संज्ञा की, ओग संज्ञा मैंने क्या कि ऐसे तो हम लोग दूसरे लोगों को ओग संज्ञा वाले कह देते हैं जो क्रियाकांड में पड़े हैं, लेकिन हम तो कुछ दिमाग लगाते हैं इसलिए हम मानते हैं कि हम तो ज्ञान क्रिया में पड़े हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं, इसलिए हमारी ओग संज्ञा नहीं है। लेकिन ये ओग संज्ञा की सीमा में ही चलता है। ओग संज्ञा का विचार करें तो इसकी चरम सीमा मैंने आखिरी हद क्या है इसका विचार करना चाहिए हमें, कि ओग संज्ञा में तो यही है कि जहां तक भाव भाषण नहीं हुए वहां तक ओग संज्ञा बनी रहेगी, ये इनकी हद है, लिमिट है। अच्छा ये तो बात रही लिमिट की, लेकिन ओग संज्ञा की निवृत्ति कैसे हो ये अपने लिए प्रयोजनभूत बात है कि हमारी योग संज्ञा कैसे मिटे। कि बिना प्रयोग भाव भाषण होता नहीं, सिर्फ विचार करने से भाव भाषण नहीं होता, विचार करने से कुछ कल्पनाएं हो सकती है, लेकिन भाव भाषण होने में तो एकमात्र प्रयोग ही साधन है, बिना प्रयोग ओग संज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। विचार प्रयोग नहीं है, विचार विचार है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग के काल में विचार हो सकता है, फिर भी विचार विचार है, प्रयोग नहीं है, प्रयोग है सो विचार नहीं है। ये तो प्रयोग तो प्रैक्टिकल साइड का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रयोग है एक प्रैक्टिकल है, और उसमें एक प्रोसेस होता है, और विचार में ये प्रोसेस नहीं होता। नहीं समझ में आया, और स्पष्ट करें उसमें कि आपको भूख लगी है, और आप भूख लगी है इसलिए खाना खाना खाने चाहिए इसका विचार करते हैं, बहुत सी मिठाइयों को का वर्णन भी सुनते हैं। क्या आपको जरूरत है आहार के, इसलिए अच्छे आहार तो मिठाई पौष्टिक आहार होते हैं, उनकी किताब भी पढ़ते हैं, उनके विषय में बहुत सुनते भी हैं, और जहां भी खाना तैयार हो उसको देखते भी हैं, लेकिन पेट नहीं भरता, इससे भरता है क्या? मिठाई का गुणगान सुनने से पेट नहीं भरता, देखने से भी पेट नहीं भरता, या बोलने से भी पेट नहीं भरता, विचार करने से के विचार करने से भी पेट नहीं भरता। तो इसके लिए कैसे हम खाएं आहार को ग्रहण करे, उस ग्रहण करने का इनिशिएटिव मूड आना चाहिए, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं या प्रयोग कहते हैं। प्रयोग और पुरुषार्थ, इसमें विचार तक की जो सीमा है इससे आगे का एक कदम है क्या?
अंतर्मन,
जो अपना थिंकिंग चलता है, विचार चलता है, यहाँ से एक कदम हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ तक तो हम पहुंचे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और पढ़ने सुनने के बाद इसका विचार भी काफी मात्रा में करते हैं, बहुत करते हैं। जो लोग निवृत्त है, प्रवृत्ति जिनको नहीं है, जो व्यवसाय से अलग हुए हैं, उन लोगों को तो विचार करने का बहुत अवकाश मिलता है, इसलिए करते भी हैं, फिर भी काम नहीं होता। इसका क्या कारण? कि जो बात हमने सोची है उस बात को हम हमारे परिणमन में लागू नहीं करते क्या? प्रैक्टिकल है वो थिंकिंग से एक स्टेप फर्दर है, आगे चलना है, वन स्टेप फर्दर, एक कदम आगे बढ़ना है। वो क्या है? कि जो बात हमने विचार किया है उसको हमने परिणमन में लागू करने का इनिशिएटिव होना,
इनिशिएटिव प्रयोग
है।
और इसके स्टेप आगे जाएंगे तो विचार ही नहीं रहता,
जैसे अप्लाई करना। लागू करना उसको क्या कहते हैं? जो बात हम विचार में लेते हैं उसको हम हमारे जीवन में, हमारे परिणमन में लागू करें। जैसे हम कहते हैं कि हमारे परिवार वाले जन हमारे नहीं, आत्मा के नहीं, बराबर, कि ये हमारा लड़का है। तो ज्ञानी पुरुष ने ये बताया कि तुम कहते हो तुम्हारा लड़का, लेकिन वो लड़का तुम्हारा नहीं है, तुम भिन्न हो एक आत्मा, वो भी एक आत्मा भिन्न है, तुम्हारा देह भिन्न है, उनका देह भी भिन्न है। अब वो बात आपको जची है, आप उस पर विचार किया है कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से बात तो सही है, न्याय से, युक्ति से बात सही है, आगम भी यही बात कहता है, हम भी उसके साथ सम्मत हो जाते हैं विचार करके, तो क्या हमारी योग संज्ञा चली गई क्या? हम कहते हैं कि नहीं गई। कैसे नहीं गई? हमने माना, हमने जाना, फिर क्यों नहीं गई? कि आप जब देखते हो अपने लड़के को, देखते हो तो अपने लड़का है ऐसे देखते हो, सुना है, सम्मत किया है कि मेरा नहीं है, पर देखते हो तो मेरा है, तो उल्टा प्रयोग आप करते हो, प्रयोग आप करते हो। देखिए, आप विचार मान नहीं करते, लड़के को देखते वक्त ये विचार नहीं करता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, कोई विकल्प नहीं करना पड़ता, कोई विचार नहीं करना पड़ता, अब तो प्रयोग ही करते हो कि मेरा है। तो ज्ञानी कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ऐसा प्रयोग करो, विचार मात्र नहीं करो, बस ये प्रैक्टिकल है। हैदराबाद से आए बहुत, काफी रस लेते हैं, इन्हें सब हिंदी बोलू पड़े, हैदराबाद थे वैसे, गुजराती में थे, नहीं आप भाई साहब अच्छा, बहन जी पर हिंदी भाषी थी, सारो रस ले सके हम लोग। तो उल्टा प्रयोग हमारा जीवन का चालू है, जो भी बात हमने तत्व ज्ञान से समझी है, सम्मत कर ली है, तो हमें उसको लागू करनी चाहिए। जहाँ तक सम्मत नहीं हुए वहाँ तक तो हमारी वैचारिक भूल है, सम्मत करने तक जगह जब हम पहुँचे फिर काम क्यों नहीं हुआ? हमने माना जाना फिर क्यों काम नहीं हुआ? यही कारण है कि इस बात को हमने लागू नहीं किया, जीवन में लागू नहीं किया। और वहाँ एक डेंजर पॉइंट भी है कि हमने जान लिया, हमने मान लिया, फिर लागू नहीं किया, तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा अभिमान आए बिना रहेगा नहीं। और यहाँ से नीचे गिरने की शुरुआत हो जाएगी। अगर प्रयोग में नहीं आया, समझदारी करके प्रयोग में नहीं आया, तो जो समझदारी तक जो अपवर्ड ट्रेंड था, ऊंचे ऊंचे जाने का जो हमारा प्रवाह था परिणाम का, वो डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। मैंने हम फिर गिरते जाएंगे हमारे परिणाम में। ये एक डेंजर पॉइंट है इधर, ये खतरा है इधर। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को अभ्यास में सही समझ आ जावे, फिर एक खतरा है, तो इस जगह पर है। और इसकी चर्चा परिचर्चा हमारे यहाँ आजकल नहीं चलती। क्या सतीश भाई सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दिमाग वाले हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसे जीव आए कि सम्मत, कभी करीब करीब सभी को तो सम्मत हो जाते हैं, किसको नहीं बैठती हो दूसरी बात है, उसकी चर्चा में करने भी नहीं। लेकिन जिसको सम्मत हुई कि ये गुरुदेव कहते हैं सही है, गुरुदेव कहते हैं इसलिए नहीं, मेरी बुद्धि न्याय से युक्ति से मुझे ये सही लगता है, फिर भी हम सम्मत करके आगे नहीं बढ़ते हैं प्रयोग में, तो एक नई आपत्ति खड़ी होने वाली है, निश्चित रूप से हो जाएगी ये आपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसलिए ओग संज्ञा की निवृत्ति नहीं करेंगे या निवृत्ति करने के लिए प्रयोग में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रयोग के क्षेत्र में अपनी कोशिश नहीं चलेगी, अपना प्रयास नहीं चलेगा, तो स्वरूप का निश्चय नहीं होगा। और स्वरूप निश्चय हुए बिना कोई काम निर्णय के पहले आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, उसी दिशा में अनुभव की दिशा में कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं।
काम के द्वारा ज्ञान को देखना, ये तो हमने विचार तो सुना है, लेकिन प्रयोग कैसे करें?
ज्ञान के द्वारा आप अन्य अन्य द्रव्य भावों को वेद रहे हैं, ऐसा आपका परिणमन चालू है क्या? जैसे ठंडी लगती है इन दिनों में, या खाने बैठते हो तो ये कोई चीज अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि समिति में तो सभी अपने घर के तरह तो प्रेपरेशन हुए भी नहीं, एक रोटी अच्छी आई एक रोटी अच्छी नहीं भी आएगी, लगता है ये ठीक नहीं है, ये लगना जो है ना वही उल्टा प्रयोग है। तो आप उल्टे प्रयोग पर जागृत है क्या? जब आपको ज्ञान से ज्ञान का वेदन करना है, यानी ज्ञान ज्ञान वेदन को आविर्भूत करना है, या स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति रूप स्वरूप निश्चय करना है, देखिए पहला तो ये स्टेज है ना निर्णय का, स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति रूप निश्चय, तो इसके विरुद्ध जो भी प्रक्रिया चालू है, हमारे परिणमन चालू है, उस पर हमारा कोई ख्याल है, कोई जागृति है, कोई समझ है, कोई कार्य चल रहा है, हम नुकसान तो बंद करें नहीं, और नफा चाहिए मुनाफा चाहिए मुनाफा, लेकिन नुकसान में खड़े हैं, इसका क्या है? नुकसान तो पहले बंद करो। तो नुकसान बंद करने की दिशा में हमारा कोई प्रयास नहीं हुए, पर हम मुनाफा ही चालू करना कर देना चाहते हैं, नास्ति को छोड़ दिया, अस्ति के लिए हम कोई आशा धरें आशा रखें, बेकार बात है, होने वाली नहीं। तो ये करना चाहिए क्या? उल्टा चल रहा है, सुलटा करना है, एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों बात चालू रहना चाहिए, उल्टा सुलटा, उल्टा को निकालने की, सुलटा को प्रारंभ करने की।
उल्टे प्रयोग में अच्छी रोटी और बुरी रोटी नहीं दिखती है, तो उल्टा प्रयोग में आता है तो अच्छी बुरी भी नहीं दिखती है
क्या?
रोटी जो होती है सामने, ये अच्छी है बुरी ऐसा नहीं दिखता है।
नहीं, लगता है तो लगता है, उसमें लागू करो कि क्यों लगा, ये लगा क्यों, क्या वो अच्छा है क्या? अगर मिठाई अच्छी है तो खाते ही रहो, छोड़ते क्यों हो? अगर मिठाई खाना अच्छा है तो खाते ही रहो, फिर छोड़ तो छोड़ो, क्यों छोड़ते हो? अच्छापन है ही नहीं, कल्पना छूट जाती है थोड़ी खाने के बाद, ये अच्छी चीज है ये कल्पना छूट जाएगी। तो वहां देखो, अनुभव करो, क्या अनुभव हुआ, कैसे वो गलत अनुभव हुआ, ये कल्पना कैसे हुई कि चीज अच्छी थी, अपनी समझ को वहां लागू करो। तो ऐसे पहले ये मंद होती है, विपरीत परिस्थिति पहले मंद होती है, मंद होती में भाव भाषण आने की शुरुआत होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये अंग्रेजी में कहावत हम पढ़ते थे उन दिनों में, कि जो प्रैक्टिस है वो आदमी को परफेक्ट कर देता है। हर जगह वही बात है, जितनी भी टेक्निक है जगत में, जितनी भी खूबियां हैं, उसमें प्रैक्टिस से ये आसान होती है, हस्तगत हो जाती है। तो एक तो ओक संगना ऐसे निकालनी चाहिए, तीसरा ऐ सत्संग, हमारा संग जो है वो गुणवान के साथ होना चाहिए, अवगुणी का संग हमें नहीं करनी चाहिए, प्रीति नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। संग करना मैंने प्रीति करनी या संग की अपेक्षा होनी रहनी, उसी को संग कहते हैं। जैसे हम गुरुदेव के संग में जा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव पर ये आरोप हम नहीं डाल सकते कि गुरुदेव हमारे संग में रहते हैं या आते हैं, क्योंकि हम जाते हैं, हमारी अपेक्षा है उनके संग में रहने की, गुरुदेव को अपेक्षा नहीं है हमारे संग में रहने की। तो संग को तो अधिक गुणवान के संग में रहना, ये श्री गुरु का उपदेश है। अपने से कम गुणवान के संग में जाने की प्रीति अपेक्षा रुचि नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो ये असत्संग है। तो यहाँ एक समस्या खड़ी होती है, वो समस्या ऐसी है, यहाँ एक समस्या खड़ी होती है, वो समस्या ऐसी है कि परिवार का तो संग रहता ही है, और क्या हम घर छोड़ के जंगल में चले जाए तो काम हो जाएगा क्या? ऐसे भी नहीं होने वाला। ऐसे घर छोड़ के कहीं लोग जंगल में चले गए लेकिन इनका काम नहीं हुआ है, वो बात भी नहीं है। परिवार का तो संग रहता है, बाजार में जाते हैं तो कहीं दुनियादारी का काम है तो दुनिया वाले से ही संग होगा, तो ये भी है तो असत्संग। लेकिन हमारी वर्तमान प्रयोजन पूर्ता उसके काम में बैस, उसके साथ काम लेवे, लेकिन कोई धर्म बुद्धि से तो कोई संग नहीं करते, यानी काम निपटा तो बात खत्म, मतलब नहीं है फिर इससे मिलने का जुलने का। संग करने की रुचि मतलब क्या होता है कि आदमी को जैसे टाइम मिलता है तो क्या करता है, चलो उसको मिलने को जाओ, उसको मिलने को जाओ, ये हमारे सगे है, ये संबंधी है, ये मित्र है, वो है, वो है, वो सब असत्संग है। तो जितना अपना उदय है, उदय के साथ जितना काम है निपटने के लिए कॉन्टेक्ट होगा तो उतना तो अनिवार्य है करना इस भूमिका में, इससे ज्यादा लगाव नहीं रखना। बाकी का अपना जो समय है सत्संग में रखना चाहिए, और सत्संग की रुचि बढ़ने से स्वरूप निश्चय नहीं हो सकता। इधर जो कृपालु देव की बात है वो उतनी है कि जिन मुमुक्षुओं को सत्संग और असत्संग का विवेक नहीं है, और हे उपाधि का विवेक उसमें नहीं रहता है, वो प्राय असत्संग में रहता है और उसको स्वरूप निश्चय होने का अवकाश नहीं है, वो नहीं कर सकता है। करने को जाएगा कल्पना कर बैठेगा, शास्त्र पढ़ करके सुन करके स्वरूप निश्चय करने को जाएगा उसको कल्पना हो जाएगी। इसलिए असत्संग भी एक प्रतिबंधक कारण है। उस कारणों में उदासीन हुए बिना आगे कहते हैं कि ये तीनों कारणों की रुचि प्रीति छोड़ करके उपेक्षित किए बिना उसको निसत्व, जिसमें कुछ माल नहीं है, निसत्व शास्त्रीय परिभाषा है, जिसमें कुछ माल नहीं है, कुछ दम नहीं है, ऐसा कहते हैं, निकम्मी बात है। निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया, ये सब संप्रदाय में जो चलती है, चलती थी उस वक्त, इसलिए उसका उल्लेख किया है। उस क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं, मैंने साक्षात कुछ लाभ नहीं, और परंपरा डायरेक्ट कोई लाभ नहीं, सीधा लाभ नहीं, परंपरा भी लाभ नहीं, परंपरा भी मोक्ष नहीं, इनडायरेक्ट भी कोई लाभ नहीं, ऐसा माने बिना निसत्व, ऐसा माने बिना निसत्व, मैंने निकम्मी ऐसे अशास्त्र, निसत्व ऐसा अशास्त्र माल बिना का, क्या बोले? अब देखिए आचार्य रजनीश का किताब क्या है देवचंद भाई हैदराबाद एक दफे घर पर ले गए, आचार्य रजनीश का एक किताब देखा, दिखाया मुझे, बहुत बढ़िया है, प्रशंसा करने लगे। लेक्चर था, बहुत बढ़िया है, और उसके तो ऑरेटरी तो क्लास वन थी, कोई सवाल नहीं, लेकिन वो भी कुछ चक्कर में तो थे ही। तो सारी किताब में से मैंने 10 मिनट में एक चैप्टर निकाल करके बोला कि देखो कितनी गड़बड़ी है, क्या सारे किताब में से 10 मिनट में मैंने एक पन्ना पेज निकाल करके पढ़ाया, कितनी गड़बड़ी है देखो। बात तो सही है, मेरा तो ध्यान नहीं गया, मैं तो थारी पढ़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्या? तो ऐसे निसत्व साहित्य जो है, जिसमें आत्म लाभ होने का अनुभवी पुरुष के वचन जिसमें है, उसी को ही पढ़ना है। और सब साहित्य है वो हमारे लिए पढ़ने लायक नहीं है, जगत में इसका कितना भी मान सम्मान हो सकता है, वो तो इंटरनेशनल फिगर था आचार्य रजनीश, तो भारत का आदमी होने पर भी वो तो इंटरनेशनल था, फिर भी गड़बड़ी बहुत थी। तो ये निसत्व बातें हैं सब, उसमें कोई दम नहीं है, विपरीतता बहुत सी है इसमें। और असद्गुरु, ऐसे लोग को असद्गुरु कहते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, उपदेश देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लेकिन असद्गुरु है, क्योंकि खुद को तो आत्मानुभव हुआ नहीं, आत्मकल्याण किया नहीं, जिसके पास जो चीज नहीं है वो दूसरे को क्या देगा, जो माल अपनी दुकान में वही बेचेगा। ऐसे असद्गुरु वो अपने लाभ के तो निमित्त नहीं है, लेकिन आत्मस्वरूप को आवरण के मुख्य कारण है, क्या? आत्मस्वरूप को अधोगति में ले जाने के लिए ये मुख्य कारण है, क्योंकि धर्म के स्थान में अधर्म को वो, अधर्म को वो सिखाता है, समझाता है, बढ़ा देता है, गृहित मिथ्यात्व का पोषण मिल जाता है। आत्मस्वरूप को आवरण के मुख्य कारण है, उसको साक्षात आत्मघाती जाने बिना, क्या जानना? आत्मा के खून करने वाले हैं ये आत्मघाती, ऐसा जाने बिना जीव को, जीव का स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, जीव को अपने जीव का स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है। और जहां तक अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होगा, स्वानुभव का कोई मूल कारण तो है ही नहीं और दूसरा कोई कारण से स्वानुभव होवे वो असंभव है, बनी नहीं सकता। जीव को जीव का स्वरूप को निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुष के प्रकट आत्म स्वरूप को बताने वाले कहने वाले ऐसे जो वचन हैं, ये वचन भी उसी कारणों से उसी कारणों के जरिए जीव को स्वरूप को विचार करने में बलवान हो सकते नहीं। क्या कहा कि ज्ञानी पुरुष का संग होगा, आत्म स्वरूप को बताएंगे, सीधा बताएंगे, फिर भी ऐसे कारणों के लिए कारण से हमारा स्वरूप निश्चय होने में ये तकलीफ होगी, बाधा होगी, दिक्कत होगी। ये प्रश्न हमारे लोगों को खास विचारने योग्य है कि जब अस्थि हमने सुनी पद्मचंद जी, क्या सुना हमने कि अस्थि रूप से हमारा आत्मा ऐसा है, हमारा जीव का ऐसा स्वरूप है, ऐसा सुना, उस पर विचार किया, हमको ये ठीक लगा है कि नहीं, गुरुदेव कहते हैं बात तो सही है, आत्मा का मूल स्वरूप तो ऐसा ही हो सकता है, अब हमको प्रतिभासित क्यों नहीं होता। मेरा प्रश्न है ये, गुरुदेव जैसे महापुरुष और एक अच्छे अनुभवी पुरुष, अच्छे बताने वाले पुरुष, कहने वाले पुरुष मिले, पर हम भी कम अक्लवान तो नहीं है, मानते हैं क्या? हमारे में अक्ल कम है ऐसा कोई मानते हैं क्या? कोई नहीं मानेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। सफलता तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार होती है, और असफल होने वाले भी ये तो नहीं मानेंगे कि मैं कम अक्ल हूँ, अक्ल तो मेरे में पूरी है लेकिन प्रारब्ध ने सहयोग नहीं दिया, ऐसा ही सब विचार तो ऐसा ही करते हैं ना। हम लोग बुद्धिजीवी आदमी हैं, बुद्धि से हमारी कमाई करते हैं या जीवन चलाते हैं, बुद्धिमानी होते हुए भी, पर गुरुदेव जैसे मिलने पर भी हमको लगता क्यों नहीं, भाष्यमान नहीं होता? इसका मतलब क्या कि जैसा गुरुदेव आत्मस्वरूप कहता है ऐसा लगता क्यों नहीं? विचार में आता है लेकिन लगता है कि मैं देह वाला, लगता है कि मैं राग वाला, लगता है कि मैं परिवार वाला, क्यों लगता है? लगता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री को लगता है कि मैं स्त्री हूँ, आत्मा को स्त्री पुरुष हो सकता है क्या? क्या लगना और विचार करना में क्या अंतर है, और ये कैसे टूट सकता है? ये एक विचारणीय मुद्दा है हम लोगों के लिए कि जब हम मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, लगता क्यों नहीं है? इसके लिए जो भी अनुभवी पुरुषों ने प्रयोग दिया है वो प्रयोग हमें करना होगा, उस प्रयोग में हमें शामिल होना होगा, इस प्रयोग का आरंभ किए बिना और इस प्रयोग को बढ़ाए बिना इसका फलस्वरूप जो अनुभव है वो होने वाला नहीं है। पहले तो निश्चय आएगा, सही निर्णय होगा, निर्णय है, एक वैचारिक रिजल्ट नहीं है, वैचारिक फलश्रुति नहीं है, स्वरूप निश्चय ये प्रयोग की फलश्रुति है, विचार की फलश्रुति नहीं है। पर इतना विचार करके भी इस बात पर हम लोगों का ध्यान नहीं है आजकल कि विचार के फलश्रुति है, निर्णय है, ये प्रयोग के फलश्रुति है, कौन सा रिजल्ट है ये? गुरुदेव परमागम सार में 600 नंबर के वचनामृत में ये बात करते हैं कि भाव भाषण में तो आत्मा की केलवनी होती है, तब भाव भाषण होता है, विचार करने से नहीं होता है। 600 नंबर में ये बात दिया है परमागम सार, तो बात ही कोई अलग है। इस तरह जहाँ तक हम सही दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तो इसके फलश्रुति रिजल्ट की आशा रखें तो बेकार है। सही दिशा में हमें कदम उठाना चाहिए, यहाँ तक रखें।
सुप्रिय स्वामी की जय।